नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और स्वागत करता हूँ द अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारत के एपिसोड 16 में, हिडिंबा एंड घटोत्कच, द फर्स्ट क्वीन एंड द प्रिंस। दोस्तों, आज एक माँ और एक बेटे की कहानी है जिन्हें सही मायने में जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए थी या फिर जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था वो शायद उन्हें नहीं मिला, जबकि उनका ओहदा पहली रानी और पहले राजकुमार का था। टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं हिडिंबा और घटोत्कच की बात कर रहा हूँ। वैसे आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे हिडिंबा या घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच तो बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर भी है। तो जिन्हें नहीं पता, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि हिडिंबा कौन थी या घटोत्कच कौन थे या फिर इनका रिलेशन क्या है, महाभारत की कहानी में ये कहाँ आते हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा स्क्रैच से बताता हूँ। तो हिडिंबा असल में एक राक्षसी है और उनके बेटे का नाम घटोत्कच है और रिलेशन में ये पांडव भीम की बीवी लगती है। तो ये एक मोटा मोटी जो हिडिंबा के बारे में है वो मैंने आपको एक रफली एक आइडिया दे दिया है। तो कहानी की शुरुआत होती है पांडवों और कौरवों के बीच से। अब हम सभी जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच में कभी भी बनती नहीं थी, बचपन से ही एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ाइयाँ चल रही है, भाई भाई के ग्रुप में एक ऐसा चल रहा है। तो कौरवों ने एक ऐसा प्लॉटिंग करा था जिसमें कि पांडवों को और उनकी माँ कुंती को एक ऐसे महल में रखा जाए जो मोम का बना हो और फिर उसमें आग लगा दिया जिससे कि वो लोग मर जाएंगे। लेकिन अब इस प्लॉटिंग के बारे में कृष्ण को पता रहता है तो वो पहले से ही अरेंजमेंट करा देते हैं वहाँ पे इनके जो हितैषी होते हैं विदुर, उनके थ्रू बोल के कि इस महल के नीचे से एक ऐसा सुरंग बना दो जो कि एक जंगल में शहर के बाहर निकले ऐसा। तो खैर, ये आग वाग वो लोग आके वहाँ पे रुकते हैं, वो आग लगा देते हैं और ये लोग जंगल में पहुँच जाते हैं उस सुरंग के रास्ते। अब इस जंगल में जहाँ पहुँचते हैं पांडवों को ये जंगल थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ है, पूरी हरियाली है, जितने भी जंगल हरा भरा होना चाहिए, फल वल सब कुछ है, लेकिन इनको यहाँ पे कोई जानवर नहीं दिखता है। तो युधिष्ठिर को लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, और वो अपने भाइयों से भी कहते हैं कि यहाँ देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि इतना हरा भरा जंगल में जानवर नहीं होना मतलब यहाँ पे कोई कुछ और रहता है। अब इन लोगों में भीम जो है बहुत बलशाली है तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग आराम करो, मैं जग के पहरा देता हूँ और अगर कुछ रहा तो मैं निपट लूँगा। अब दूसरी ओर इसी जंगल में एक राक्षस रहता है जिसका नाम होता है हिडिंबासुर। अब वो राक्षस है, अब राक्षस लोगों का सूंघने का शक्ति बहुत खतरनाक होता है। तो जैसे ही ये मनुष्य लोग उस जंगल में आता है, पांडव और उसकी माँ, ये सूंघ लेता है कि कोई तो मनुष्य आया है, हाँ, अब उसका भूख बढ़ जाता है कि भाई अब खाना पड़ेगा इनको। तो वो अपनी बहन हिडिंबा से कहता है कि तुम जाओ और उनको बहला फुसला के ले आओ मेरे खाने के लिए। हिडिंबा कहती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ। और फिर ये पहुँच जाती है उस जगह पे जहाँ पे पांडव लोग रेस्ट कर रहे हैं और भीम पहरा दे रहे हैं। अब ये गई तो थी इस मकसद से कि उनको बहला फुसला के लाना है और भाई उनका खाएगा, लेकिन वो भीम को देख के उसके पैर में पड़ जाती है। अब भीम एकदम भयानक बॉडी शॉडी वाले बलशाली इंसान थे, तो ये देख के हिडिंबा को ऐसा कहिए कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, मतलब उसको देख के ही पैर में पड़ जाती है। अब चूंकि वो भी राक्षसी थी, उसको भी तंत्र मंत्र सब कुछ ये सब आता था, तो वो अपने मंत्र से एक अप्सरा का रूप लेती है, मतलब बहुत ही खूबसूरत, और ये रूप लेके वो जाती है भीम के पास और भीम को वो कहती है कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और ये भी बताती है कि उसका भाई एक राक्षस है और वो इन लोगों को मारना चाहता है। तो भीम देख के उसको अच्छा तो लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की आई है, बात कर रही है। तो ये इनका कॉन्वर्सेशन इधर चल ही रहा होता है कि इधर हिडिंबासुर को लगता है कि अभी तक उसकी बहन लेके क्यों नहीं आई है, और ये पता करने के लिए वो वहाँ पहुँच जाता है और देखता क्या है कि उसकी बहन जो कि अभी अप्सरा के रूप में है वो उस इंसान से बात कर रही है जिसको खाना है। तो वो इतने गुस्से में आ जाता है हिडिंबासुर कि वो अपनी बहन को बोलता है कि तुमको लाने के लिए बोला इनको बहला फुसला के, तुम यहाँ बात करने लग गई, अब तो मैं पहले तुम्हें मार के खाऊंगा, बाद में इन बाकी लोगों को खाऊंगा। अब भीम भाई क्षत्रिय आदमी है, देखे कि इस तरह से कोई औरत पर अटैक करने जा रहा है, वो भी राक्षस, तो वो बीच में आ जाते हैं और दोनों में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर अब दो इतने बलशाली इंसान है कि इतना बड़ा बड़ा पूरा जंगल में लड़ाई हो रहा है, तो इनके भाई लोगों का नींद खुल जाता है, बाकी पांडव भी उठ के आ जाते हैं। और ये लड़ाई इतना भयानक था कि अब ये चल ही रहा है, मतलब कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा है उस इंस्टेंट। लड़ाई होते होते अब धीरे धीरे रात होने लग जाता है। तो सहदेव जो इन लोगों में है वो भीम से कहते हैं कि अभी रात अगर हो गई तो ये राक्षस का पावर डबल हो जाएगा, तो रात होने के पहले ही तुम इसको मार दो। तो भीम फिर पूरी ताकत लगा के हिडिंबासुर को एकदम वहां पे मार देते हैं। अब हिडिंबासुर के मरने के बाद हिडिंबा फिर से भीम को अप्रोच करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत दिलो जान से प्यार करती हूँ और तुम्हें देख के मेरे मन में इमोशनल प्यार और सेक्सुअल फीलिंग्स जाग गए हैं, तो मैं तुम्हें एज ए हस्बैंड अपनी लाइफ में अपनाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। अब इस पे भीम उसको कहते हैं कि तुम राक्षस की बहन हो तो कल को अपने भाई का बदला लेने के लिए ज़रूर मेरे पीछे आओगी, तो इससे पहले कि वो मौका आए मैं तुमको अभी ही मार देता हूँ। और ये बोल के वो हिडिंबा को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर तभी अर्जुन बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है, एक क्योंकि इसने हमारी मदद की है, इसने आके हमें बताया कि इसके भाई का इंटेंशन क्या है और ये अभी अपने प्यार का इजहार कर रही है, वो भी खुल के बिना किसी हेजिटेशन के। इधर हिडिंबा देखती है कि अभी ये मानने को तैयार नहीं है, तो वो कुंती के पास जाती है और वहां जाके अपने रियल रूप में आ जाती है। अब रियल रूप देख के बाकी सबको ही घबरा जाते हैं, भीम भी चौंक जाता है क्योंकि उसके पहले वो अप्सरा के रूप में थी। और वो कुंती से कहती है कि मैं दिलो जान से आपके बेटे को चाहती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तो कुंती कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि कि तुम एक राक्षसी हो वो एक इंसान है, तो ये बहुत ही अननेचुरल मिलन है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तो हिडिंबा फिर कहती है कि नहीं मैं भी एक स्त्री हूँ, भले ही राक्षसी क्यों ना हो मेरे मन में भी फीलिंग्स है और आप एक स्त्री हो आप समझोगे इस बात को, और मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, मुझे फ्यूचर का भी पावर है कि मैं आगे का देख सकती हूं और मैं ये आपको बता सकती हूं कि मेरा आप लोगों के साथ रहने में आप लोगों की बहुत भलाई है और आप जब चाहेंगे मैं मदद करने को तैयार हो जाऊंगी। अब ये सारी बातें सुन के कुंती कन्विंस हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है चलो एक कंडीशन पे मैं परमिशन दूंगी कि शादी करने के लिए, और वो ये है कि जैसे ही तुम्हारा और भीम का बच्चा होगा भीम तुम्हें छोड़ के वापस अपने भाइयों के साथ आ जाएगा। अब हिडिंबा प्यार में इतनी पागल थी वो बोलती है कि ठीक है मंजूर है और हाँ बोल के रेडी हो जाती है। अब कुंती भी कहती है भीम से कि ठीक है तुम इसके साथ शादी कर लो और इसके साथ अभी रहो। अब बहुत लोगों का ये भी मानना है कि जब हिडिंबा ने अप्रोच किया था कुंती को तो कुंती इस बात से घबरा गई थी कि उनके पांडवों के खानदान में सबसे बड़ी बहू राक्षसी रहेगी तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जैसे ही हिडिंबा ने ऑफर दिया कि उसके पास पावर्स है, ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर में इनको हेल्प आएंगी, तो ये सुन के फिर कुंती कन्विंस हो जाती है। तो एक तरह से कुंती भी फ्यूचर का सोच के वो इस रिलेशन के लिए मान जाती है। तो बहरहाल हिडिंबा और भीम की शादी हो जाती है और इस तरह से वो पांडव खानदान में सबसे पहली बीवी बनती है, मतलब सबसे पहले रानी बनती है, बीवी वो सिर्फ भीम की होती है। अब हिडिंबा और भीम से जो बच्चा होता है उसका नाम होता है घटोत्कच, और कहते हैं कि जैसे ही घटोत्कच का जन्म होता है वो तुरंत बड़े हो जाते हैं, मतलब वो बचपन वाली सारी स्टेजेस वो पार नहीं करते हैं। तो घटोत्कच के पैदा होते ही जैसा कि पहले प्रॉमिस किया हुआ था कि बच्चा होते ही भीम उनको छोड़ के वापस चले जाएंगे, तो भीम हिडिंबा और घटोत्कच को छोड़ के वापस अपने भाइयों के पास चले जाते हैं। और हिडिंबा यहाँ पे एक बार भी कंप्लेन नहीं करती है क्योंकि उसे पता था कि उसने जो प्रॉमिस किया है उसको निभाना जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह से हिडिंबा और घटोत्कच पांडवों के खानदान की पहली रानी और पहले राजकुमार थे। हालांकि उनको कभी इतना इंपॉर्टेंस या फिर रिकॉग्निशन उस हिसाब से मिला नहीं, और आज के डेट में भी ज्यादातर पांडवों की वाइफ के नाम पे सब द्रौपदी को ही जानते हैं। जबकि इधर हिडिंबा पूरे लाइफ टाइम में कभी भी कंप्लेन नहीं करती है, इनफैक्ट वो कभी भीम के लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करती है, और घटोत्कच को वो सिंगल हैंडेडली ही पाल पोस के बड़ा करती है, चाहे
उसे युद्ध सिखाना हो, चाहे तंत्र मंत्र जादू टोना या माया या फिर इल्यूजन वाली शक्तियाँ, जितना सब कुछ हो वो सब कुछ वो अकेले ही सिखाती हैं। और घटोत्कच कहते हैं कि उनके चूंकि माता और पिता इतने पावरफुल थे, माँ राक्षसी थी और पिता इतने बलशाली थे कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर था और उनको तंत्र मंत्र जादू टोना माया, उसके बाद इल्यूजन क्रिएट करना और ऊपर से शक्तिशाली बॉडी वाइज वो भी बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन हिडिंबा ने पालन पोषण उसका ऐसा किया था कि उनमें राक्षस वाले गुण नहीं थे कि लड़ाई हुआ किसी को मार दिया या फिर टेंपर या फिर गुस्सा, ऐसा नहीं था। वो बहुत ही बोलते हैं जेंटल थे, बहुत ही दयालु भी थे। और इसके अलावा हिडिंबा ने हमेशा पांडवों को बोल के रखा था कि आपको जब भी जरूरत हो मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगी। और कहते हैं कि ड्यूरिंग जब भी ये लोग जंगल में जितने टाइम पे थे उस टाइम पे हिडिंबा ने बहुत मदद की, क्योंकि एक तो वो राक्षस थे, उन्हें उड़ने की शक्ति थी, कहीं से भी गायब हो जाते थे, कहीं भी प्रेजेंट हो जाते थे। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी शक्तियां थी जिनके मदद से पांडवों का जो लाइफ था उतना डिफिकल्ट वाला नहीं हुआ जंगल में। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड स्टोरी थी घटोत्कच और हिडिंबा के बारे में कि कैसे वो महाभारत से रिलेटेड थे या पांडवों से कैसे रिलेटेड थे। अब मैं आपको दो इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाऊंगा जो हिडिंबा और घटोत्कच से रिलेटेड है। पहला तो एक ऐसे श्राप के बारे में जो पांडवों के बच्चों के मरने का रीजन बनता है, और दूसरा कि क्यों कृष्ण घटोत्कच के मरने पे हंसते हैं जबकि घटोत्कच कुरुक्षेत्र में पांडवों के तरफ से ही लड़ रहे थे। तो उस श्राप के बारे में जानने के लिए मैं आपको उस सीन में ले चलता हूँ कि जहाँ पांडवों की शादी द्रौपदी से हो चुकी है और अभी वो लोग एक कोई यज्ञ करना चाह रहे हैं और यज्ञ में वो बार बार आग जलाना चाह रहे हैं लेकिन वो यज्ञ का आग नहीं जल रहा है। तो इसमें जो वहाँ पर ऋषि मुनि होते हैं वो कहते हैं कि चूंकि युधिष्ठिर का कोई संतान नहीं है इसलिए ये यज्ञ में आग नहीं जल रहा है। तो वहाँ कृष्ण भी रहते हैं, कृष्ण याद दिलाते हैं कि भाई भीम का बेटा है, पांडवों का पुत्र है घटोत्कच, उसको बुला लो क्योंकि भतीजा भी पुत्र समान होता है। तो कहते हैं कि ठीक है, तो घटोत्कच को बुलवाते हैं। अब इधर क्या होता है कि हिडिंबा को पता चलता है कि यज्ञ में बुलाया गया है तो वो घटोत्कच को समझाती है कि वहाँ जाना तो सबसे पहले श्री कृष्ण को प्रणाम करना, उसके बाद ऋषि मुनि को करना, बाकी वहाँ पे जो उसके बाद जो सीनियर हैं जो उनको करना, फिर अपने पिता को करना और उनके भाइयों को करना, इसके अलावा किसी और को प्रणाम मत करना। अब घटोत्कच अभी वो मतलब जो बोलते हैं ना थोड़ा ऐसा बालक अवस्था वाला जो स्टेज है उस अवस्था में है तो वो समझ जाते हैं कि क्यों करना चाह रही है ऐसा, ये क्यों कह रही है, क्योंकि वहाँ द्रौपदी भी रहेगी। तो वो कहती है कि ये गलत है, उनको ये इंसल्ट फील होगा। अब द्रौपदी के बारे में ऐसा था कि द्रौपदी की जब शादी हुई थी तो उसने ये कंडीशन रखा था पांडवों से कि इंद्रप्रस्थ जो मेन है जहाँ पे सारे पांडव लोगों का महल है वहाँ पे कोई भी पांडव अगर कोई दूसरी शादी करता है तो वहाँ पे अपनी बीवी को नहीं ला सकता है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी ही रहेगी। तो ये एक कंडीशन था। अब इस कंडीशन के बारे में जितनी भी रानियां थी सबको पता था और ये बात पहली बीवी होने के नाते पूरे पांडव खानदान में लाइक सबसे बड़ी बहू होने के नाते कहीं ना कहीं ये बात बहुत रूड लगा था हिडिंबा को। तो अब उसको लगा कि ये बहुत रूड लड़की है, इसीलिए वो घटोत्कच को समझाती है कि तुम भी राक्षस के कुल के राजा हो तो तुम्हारा प्रणाम नहीं करना भी चलता है। तो अब वो देखती है लेकिन कि घटोत्कच फिर भी हिचकिचा रहा है, मतलब वो ऐसे थोड़ा डर रहा है। तो अब माँ तो माँ ही होती है, चाहे हमारी आपकी या घटोत्कच की, वो कहती है कि ठीक है चलो मैं साथ में चलती हूँ और वो घटोत्कच के साथ में उस यज्ञ वाले सीन में पहुँचती है। अब चूंकि सिर्फ घटोत्कच को बुलाया गया था तो वो घटोत्कच ही अंदर जाता है, हिडिंबा बाहर रुकती है। अब अपनी माँ के कहे अनुसार घटोत्कच करते हैं प्रणाम एक एक करके द्रौपदी को छोड़ के। अब द्रौपदी को ये बात एकदम बहुत जोर से, ये बहुत बड़ा इंसल्ट लगता है और वो इतने गुस्से में आती है और गुस्से में कहती है कि तुमने सबके सामने मेरा इंसल्ट किया है तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अल्पायु रहोगे और तुम्हारी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी, कम एज में ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब ये सारा जो है श्राप का जो किस्सा है वो हिडिंबा बाहर से सुन लेती है। अब माँ कैसे चुप रहे कि उसके बेटे को किसी ने मरने का श्राप दिया है, तो वो भी गुस्से में अंदर जाती है और अंदर जाके कहती है कि भले ही तुम एक सौतेली माँ हो, घटोत्कच की तुम सौतेली माँ लगोगी, बट माँ तो हो, तो फिर तुम कैसे अपने बच्चे को ये इस तरह का श्राप दे सकती हो? तो चूंकि अब तुमने श्राप दिया है और ये होगा भी जरूर, इसको कोई रोकेगा नहीं, तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे भी जो बच्चे होंगे वो भी अल्पायु होंगे और वो भी कम एज में मारे जाएंगे। और फिर महाभारत की लड़ाई में हम लोग जानते हैं कि घटोत्कच भी मारा जाता है और द्रौपदी के जो बच्चे होते हैं उसको भी रात में जब वो सोए होते हैं उनको भी मार दिया जाता है, जबकि वो उनका एज बहुत कम होता है। तो ये तो थी वो श्राप की कहानी कि कैसे एक दूसरे का श्राप अपने ही बच्चों को लेके वो खत्म हो जाते हैं सारे पांडवों के बच्चे। अब दूसरी कहानी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है महाभारत की लड़ाई के हिसाब से, जहाँ पे कि क्यों कृष्ण हंसते हैं घटोत्कच के मरने पे। तो अब इसकी जो शुरुआत होती है वो लड़ाई के बीच में है, मतलब कि लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, 14th डे है लड़ाई का, और 14th डे में अर्जुन जो है क्या करते हैं कि जयद्रथ नाम के एक वॉरियर हैं जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं उनको वो दिन में मार देते हैं। अब जयद्रथ रिलेशन में कौरवों के जीजा लगते हैं, पूरे कौरव 100 भाई हैं, उनकी एक ही बहन है, उनसे इसकी शादी हुई थी। अब रिलेशन में तो ये भी कजन लगते हैं, इनके भी जीजा जी होंगे, लेकिन वो मार देते हैं जयद्रथ को। अब जयद्रथ के मरने के पीछे भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो मैं किसी और एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। खैर, तो अभी जयद्रथ के मरने के बाद दुर्योधन बहुत अपसेट हो जाता है, रोते हुए वो जितने भी सीनियर हैं उनको बोलते हैं कि अब अपनी बहन को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि उसके पति को मैं क्यों नहीं बचा पाया। अब ये बातों से वो अपसेट तो था ही और साथ में गुस्सा भी आता है उसको कि अभी तक पांडवों में किसी को कुछ क्षति नहीं पहुंची है जबकि मेरे 50-60 भाई मर चुके हैं। तो बोलता है कि ठीक है, तो एक काम करेंगे, जब तक मारेंगे नहीं पांडवों को तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। और बोला कि लड़ाई को कंटिन्यू रखते हैं शाम के बाद भी, मतलब रात को भी लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। और उस जमाने में लड़ाई के कुछ रूल्स होते थे जिसमें से एक ये भी रूल था कि शाम होने के बाद लड़ाई रोक दी जाएगी। लेकिन दुर्योधन तो गुस्से में था कि नहीं, लड़ाई को कंटिन्यू रखना है, तो फिर सब अंधेरे में दिया हुआ लेके कंटिन्यू रखते हैं। अब कृष्ण को पता है कि घटोत्कच जो आधा राक्षस है उसको बुलाने पे बहुत मदद मिलेगा, तो वो भीम से कहते हैं कि एक काम करो, घटोत्कच को बुलाओ और उसको बोलो जितना पावरफुल हो सके वो रात में वो उतना पावर यूज करके लड़ाई करे। अब चूंकि राक्षसों का रात में पावर डबल हो जाता है तो घटोत्कच उस रात इतना ज्यादा डेंजरस हो जाता है कि उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, और ऊपर से उसको कहते हैं कि वो इल्यूजन या माया या जादू तंत्र इन सब का वो उनको गुरु माना जाता था। अब उनके जादू से कोई बच नहीं पा रहा था, कोई उनका माया जाल में फंस रहा था, तो ओवरऑल ऐसा था कि उसको रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। दुर्योधन को लगता है कि भीम और अर्जुन तो बाद में खत्म करेंगे, पहले ये घटोत्कच अकेला ही नहीं खत्म कर दे, क्योंकि घटोत्कच गदा में माहिर होने के साथ साथ उनको माया, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र ये सब भी जानते थे और इल्यूजन क्रिएट करते थे लड़ाई में कि किधर गायब हुए, किधर से निकले, उधर से गायब हो गए। और उनके साथ एक मायावी सेना भी थी जो कहते हैं कि रावण के साथ भी इन्होंने लड़ाई करी थी। अब ऐसे लोग जिनको कि माया, जादू, तंत्र शक्ति ये सब आता हो, तो इन सबों का एक सेना था उनके पास, और इसीलिए घटोत्कच को रोकना उस रात एकदम मुश्किल था, एकदम भयानक रूप में थे। और कहते हैं कि कितना सारा ऐसा बड़ा बड़ा अस्त्र जिसको कि चलाने से खत्म हो जाता कितना सेना, उसको वो आराम से हाथ में पकड़ लेते थे। और उस टाइम पे एक राजा थे भागदत्त नाम के जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, और उनके पास उस टाइम का सबसे पावरफुल हाथी था जिसका नाम था सुपार्तिका। अब कहते हैं कि वो हाथी इतना पावरफुल था कि जिससे भीम भी डर के भागे थे, मतलब भीम को भी मरने मरने का नौबत आ गया था, जबकि भीम के पास खुद 1000 हाथियों की शक्ति है। तो आप समझ सकते हैं कि सुपार्तिका जो हाथी है वो कितना पावरफुल रहा होगा। तो इस सुपार्तिका हाथी को मारने के लिए कहते हैं कि घटोत्कच एक मायावी हाथी को बनाता है, और एक मिनट के लिए सबको ऐसा लगता है कि जो मायावी हाथी है वो कहीं सच में जो रियल सुपार्तिका हाथी है उसको मार ना दे। तो खैर वो मार तो नहीं पाता है, लेकिन वो एकदम उस टाइम पे ऐसे मोड में रहता है कि भाई घटोत्कच को आज नहीं रोका तो महाभारत उसी दिन खत्म था। तो दुर्योधन ये देख के टेंशन में आ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि अभी किस तरह से इसको रोका जाए, तो वो कर्ण के पास जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि कर्ण के पास एक इंद्र का दिया हुआ अस्त्र है। तो वो कर्ण से कहते हैं कि आपके पास जो शक्ति है इंद्र की, उसको आप प्लीज यूज करके घटोत्कच को मारे, नहीं तो फिर युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। अब इंद्र की जो शक्ति मिली हुई है कर्ण ने उसे अर्जुन को मारने के लिए रखा है, जिसका नाम है वशावी शक्ति। लेकिन कर्ण, दुर्योधन जो उनके दोस्त है, उसकी बात को टाल भी नहीं सकते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो वो अस्त्र लेके जाते हैं और वो घटोत्कच पे चला देते हैं। अब घटोत्कच पे जैसे ही वो अस्त्र चलता है, अब उनकी मृत्यु होने वाली है, तो घटोत्कच क्या करते हैं कि अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं और कहते हैं इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो जब गिरते हैं कौरवों की सेना के ऊपर तो एक अक्षौहिणी खत्म हो जाती है। अक्षौहिणी का मतलब होता है कि उस टाइम पे जब बताया पूछा जाता था कि आपकी सेना कितनी बड़ी है तो अक्षौहिणी में बताया जाता था। अब एक अक्षौहिणी में करीब 200,000 सेना आता है, जिसमें हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं और जो पैदल सैनिक हैं वो भी हैं। और कौरवों के पास टोटल 18 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 11 अक्षौहिणी थी। तो खैर, तो ये इतना बड़ा साइज कर लेते हैं कि एक अक्षौहिणी खत्म कर देते हैं, मतलब लगभग 200,000 सेना खत्म कर देते हैं। बहुत कोई कहते हैं कि ये कृष्ण ने आइडिया दिया था कि अपने साइज को जितना बड़ा हो सके बड़ा कर लो और कौरवों के सेना के साइड में गिर जाओ। तो इस तरह से अब घटोत्कच मर जाता है। अब घटोत्कच के मरने के बाद सारे जितने भी पांडव हैं वो सारे उदास हो जाते हैं। युधिष्ठिर को सबसे ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत मानते थे। अब इस बात को लेके कृष्ण लेकिन मुस्कुराते हैं घटोत्कच के मरने के बाद, क्योंकि उनको पता था कि ये जो वशावी शक्ति जो इंद्र ने दी थी कर्ण को, उसको रोकना मुश्किल था। और अगर वो अर्जुन पे चलता तो वो शायद खुद कृष्ण भी उसको रोक नहीं पाते, क्योंकि उनके सुदर्शन में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो वशावी शक्ति को रोक पाते। तो वो इस बात से खुश थे कि वो अस्त्र जो अर्जुन को मार सकता था वो अब निष्क्रिय हो गया, मतलब अब वो यूज हो चुका है, अब अर्जुन को कोई नहीं मार सकता है। और वो ये भी समझ गए थे कि कहीं ना कहीं ये पूरे महाभारत का टर्निंग पॉइंट है और यहाँ से पांडवों का जो जीत है वो एकदम निश्चित हो गया है। तो वो इस रीज़न से वो ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे कि अब अर्जुन का बचना तय है, अब उसका मरना मतलब अब वो मरेगा नहीं इनडायरेक्टली अगर कहा जाए, तो वो इस बात के लिए मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस पहली रानी और पहले राजकुमार की जिन्हें उतना इम्पोर्टेंस तो नहीं मिला, लेकिन बिना उनके महाभारत की लड़ाई का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। एक और छोटा सा फैक्ट आपको बता दूं कि हिमाचल में मनाली के पास हिडिंबा देवी नाम का एक मंदिर भी है जहां लोग आज भी दर्शन के लिए जाते हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी प्लीज जाएं। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, इस कठिन दौर में इंसानियत को जगाए रखें और जहां तक मुमकिन हो मदद करते रहें। हमेशा की तरह कहना चाहूंगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियां पहुंचाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुंचाए हुए। दोस्तों, अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज मुझे लिखें कुछ सुनाओ यार के फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पर। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार में, ओनली विथ अमित रवानी।